भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। नवयुग का निर्माण कराने, नवयुग का निर्माण कराने शिव ने जिन में स्थान लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर जन जन की सेवा में तन मन धन का किया समर्पण। एकता की माला में पिरो के किया विश्व परिवर्तन। अमृत वाणी बरसा के, सबका जीवन सुखदाई किया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर।
ओम शांति। कहा जाता है कि सूखे जंगल को तबाह करने के लिए एक चिंगारी मात्र काफी है। संसार में बहुत सारी क्रांतियां घटी, बहुत सारे क्रांतिकारी वीर हुए, चाहे देश की सुरक्षा के लिए, चाहे आर्थिक विकास के लिए क्रांतियां घटित हुई। अनेक क्रांतिकारी वीरों की दास्तान से इस भूमि पर अनेकों कहानियां हैं। ऐसे ही इस विश्व के महायज्ञ में एक महान क्रांतिकारी के साथ शांतिकारी ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने पूरे विश्व को परिवर्तन करने के लिए एक शांति की क्रांति का आंदोलन छेड़ा। 1876 में बाबा का जन्म एक गांव में, फिर धीरे धीरे उनकी लाइफ कैसे गांव की लाइफ थी, कैसे वो बिजनेस में आए, लेकिन मन में अंदर कहीं ना कहीं वो आंदोलन की चिंगारी थी। वो अध्यात्म के बीज शायद बचपन से ही उनके मन में थे, लेकिन उनको धूप और पानी जो मिला 1936, बल्कि इससे भी पहले कहेंगे 1932, जो ब्रह्मा बाबा की डायरियां मिलती हैं, जो अपने आप से बातें बाबा करते थे मन को नियंत्रण करने के लिए, अपने मन पर ही आधिपत्य स्थापित करने के लिए, कैसे कैसे उन्होंने अपने मन से बातें की। उस समय भी भगवान से मिलने की उनकी जो लगन थी, कितना अपने आप ही उन्होंने पुरुषार्थ किया, कितने शास्त्र पढ़े, जप तप किए, गुरु किए, तो कहीं ना कहीं उनके मन में जो विश्व कल्याण की भावना थी, वो धीरे धीरे उसको एक नई दिशा मिलती गई और आखिरकार 1936 में कहा जाता है शिवरात्रि के दिन, वैसे तो कोई विशेष नहीं कहा जाता लेकिन शिवरात्रि के दिन माना जाता है कि इस जो परमात्मा अवतरण हुआ 1936 में, ऐसे कोई कोई सुनने में आता है शिवरात्रि के दिन, तो वो विश्व कल्याण का संकल्प का जो बीज था वो वहां से अंकुरित होना शुरू हुआ, उसके धीरे धीरे उसको धूप और पानी मिला, फिर वो अध्यात्म का बीज किस गति से फलीभूत हुआ और उस बीज से जो पत्ते निकले, जो छोटे छोटे पौधे निकले, उनको कैसे फेस करना पड़ा। वैसे भी देखते हैं संसार में जो जितने भी क्रांतिकारी होते हैं तो उनको बहुत सारी बातों का, समस्याओं का फेस करना पड़ता है, ऐसे नहीं कोई आगे बढ़ जाता है। और जितनी भी क्रांतियां हुई वो वास्तव में हद तक थी, सीमित दायरे में थी, लेकिन ये तो विश्व को परिवर्तन करने की क्रांति, छोटी मोटी नहीं। और क्रांति के लिए जो सेना तैयार की गई तो सबसे पहले तो सेना को तैयार करने के लिए बाबा की साक्षात्कार की क्रांति शुरू हुई 1936 में। देखते हैं फोटो आते हैं जो यज्ञ के आरंभ काल के छोटे छोटे बच्चे हैं जो पिकेटिंग कर रहे हैं, वो इतने मासूम हैं, ऐसे करके खड़े हैं कि चेहरे से उनसे पता नहीं लगा कि सचमुच इनको कैसे भगवान के ऊपर विश्वास हो गया। जो संसार के जो बड़े बड़े उस सिंध हैदराबाद के जो बड़े बड़े मुखिया लोग हुए, जो प्रतिष्ठित वहां के नागरिक थे, उनके आगे पिकेटिंग करना शुरू कर दिया, छोटे छोटे बच्चे उनके आगे सो गए, रास्ता रोकने लगे, तो क्या उनको उसमें सारा ज्ञान समझ में आ गया होगा। तो वास्तव में वो साक्षात्कार की क्रांति थी। बाबा ने साक्षात्कार में ऐसे बहलाया, उनको ऐसे बहलाया कि दूसरा कोई विचार ही उनके मन में संसार का घुसा ही नहीं, इतना उनके मन को इतना शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया, परमात्म प्यार से भरपूर कर दिया, एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया कि उन्होंने संसार से लोहा लेने की ठान ली। तो बाबा ने कितना प्यार दिया उनको दिया होगा, कितना साक्षात्कार के माध्यम से उनके मन की भूमि को कितना पक्का कर दिया। बाबा ने कैसे पहचाना उस सेना को कि यही सेनानी संसार से लोहा ले सकते हैं, संसार को परिवर्तन कर सकते हैं। तो 1936 में जो साक्षात्कार की क्रांति हुई, जिसकी बदौलत एक नई सेना का निर्माण हुआ, 300-400 भाई बहन जो वहां एकत्रित हो गए छोटे छोटे, फिर उनकी पालना करना, देखभाल करना, उनको खाना पिलाना, सारी व्यवस्थाओं का सही तरीके से संचालन करने के लिए अनेक डिपार्टमेंट उनका गठन करना, फिर सबको अपने अपने दायित्व सौंपना, वो कितनी बड़ी क्रांति थी। तो उस क्रांति से ऐसी तीन सेना का निर्माण हुआ। साक्षात्कार के बाद फिर दूसरी क्रांति शुरू हुई, तपस्या पवित्रता की क्रांति। साक्षात्कार तो हुआ, वहां तक तो फिर भी वहां के जो समाज के प्रतिष्ठित लोग थे फिर भी ठीक था, लेकिन जब बात ब्रह्मचर्य की आई, तो पवित्रता की आई, तो फिर तो विरोध के स्वर और ही गूंजने लगे, और ही तेज होने लगे, और ही लोगों में आग अंदर ही अंदर भड़कने लगी कि ये तो घरों को एकदम जैसे तोड़ने के लिए कार्य किया जा रहा है। तो बहुत बड़े स्तर पर विरोध हुआ, जिसका न्यूज़पेपरों में अमेरिका तक, अनेक देशों तक उसकी गूंज गई। तो एक पवित्रता के लिए जो क्रांति आरंभ की, हालांकि उस समाज के लोगों ने भी बाबा को, ब्रह्मा बाबा को समझाने का बहुत अपनी कोशिशें की, प्रयास किया कि बाबा आप पवित्रता को छोड़ दो, बाकी सब ठीक है, बाकी तुम आपके साथ में, लेकिन ये बात ठीक नहीं है, इससे घरों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सामाजिक या पारिवारिक दूरियां बढ़ रही हैं, रिश्तों में दरार पड़ रही है, खटास आ रही है। तो बाबा ने कहा ये तो मेरा आदेश नहीं है, तो ऊपर वाले का आदेश है, इसको मैं कैसे मना कर सकता हूं। तो उस समय कैसे, कितनी बड़ी हिम्मत है बाबा की, उस पवित्रता की क्रांति को कायम रखने के लिए, उस ब्रह्मचर्य को बल देने के लिए। तो बाबा ने कितनी बड़ी क्रांति वो छेड़ी। वास्तव में वो तो खैर शिव बाबा का प्लान था, लेकिन फिर भी जो नीचे साकार जिसको सामना करना पड़ता है, पूरा समाज उसके विरोध में खड़ा हो जाए, तो वो आदमी कहीं ना कहीं हिल सकता है। लेकिन बाबा के अंदर जो निश्चय की नीम थी कितनी मजबूत थी, क्योंकि भक्ति काल से ही परमात्मा से इतना प्यार किया, इतना भक्ति पाठ पूजा किया, इतना खोजने के लिए उन्होंने तीर्थयात्राएं की, गुरु किए, साधने किए, शास्त्र पढ़े, क्योंकि संसार का सारा कुछ देख लिया था कि इस संसार से कुछ मिलने वाला नहीं है। अब ऊपर वाला आया हुआ है, परमात्मा आया हुआ है, तो जो वो कह रहा है, जिसके लिए उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया खोजने के लिए, अब वो आकर कह रहा है और मैं मना कर दूं, ये कैसे होगा? तो वो हिम्मत, पवित्रता की क्रांति स्थापित करने के लिए बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने एक समाज के सामने एक जैसे नई चीज रखी। फिर धीरे धीरे पवित्रता की क्रांति के साथ फिर धीरे धीरे ज्ञान का विस्तार होने लगा, ज्ञान की क्रांति। तो ये टोटल नया ज्ञान था, ये टोटली नया ज्ञान, जो किसी भी धर्म में इस तरह का ज्ञान नहीं है कि यहां आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, यहां जो माता पति पत्नी है वो भी भाई बहन की तरह है। अब एक नया ज्ञान आ गया तो एक और ही मुसीबत खड़ी होगी, क्योंकि संसार में जैसे मुसीबतें होती हैं, क्रांतियां आगे बढ़ती जाती हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ते जाते हैं, तो अनेक प्रकार के लोग जो विरोधी पक्ष के होते हैं, विपक्ष के होते हैं, तो षड्यंत्र, अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचते हैं उनको विफल करने के लिए। तो एक नई ज्ञान की क्रांति हुई, जिस ज्ञान के आधार पर जो भी सेना तैयार की थी उस सेना की नींव मजबूत होने लगी। उस ज्ञान में ताकत है, क्योंकि ज्ञान एक रोशनी है, प्रकाश है। तो वो प्रकाश बाबा ने सबके सामने उस प्रकाश को रखकर, जो मन के अंदर अंधकार था, जो मन में अनेक प्रकार के तूफान थे कि संसार में जितनी भी हलचल है, कि संसार में हर एक मन के अंदर जितने भी दुश्मन घुसे हुए हैं, क्योंकि संसारी क्रांतियों से मुक्त होना, और संसारी क्रांतियों से अथवा जो दुश्मन थे उनसे मुक्त होना आसान है, क्योंकि वो सारा बाहरी तौर पर है। वो तो दुश्मन अपने पास में भी नहीं है, दूर भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो दुश्मन है, पांच विकारों के दुश्मन, ये तो हर व्यक्ति के मन के अंदर जैसे छुप कर बैठे हुए हैं और उन्हीं से प्रीत करके बैठे हुए हैं, और इनको हमने दुश्मन माना नहीं आज तक, जिनसे हमने प्यार करके रखा हुआ है। तो जो नया ज्ञान अवतरित हुआ, उस ज्ञान के माध्यम से हमें जब पता चलता है कि हमारे जो मित्र जिनको हमने बना के रखा था वो ही हमारे असली दुश्मन है, अब उस मित्र के प्रति हम नफरत घृणा पैदा करना, उससे सामना करने के लिए, उसको मारने के लिए, तो एक नए ज्ञान का जो ऊपर से अवतरण हुआ या नए ज्ञान की क्रांति हुई, उस क्रांति के कारण भी कितना बाबा को सामना करना पड़ा, कितना विरोध करना पड़ा, संसार विरोध का सामना करना पड़ा, और कैसे डट के सामना किया उसका। तो इस तरह धीरे धीरे जैसे यज्ञ आगे बढ़ता गया तो ज्ञान की क्रांति हुई। फिर उसके बाद 14 साल में जो वहां तपस्या की गई, साधना भी कम बात नहीं है, क्योंकि हम इस ब्राह्मण जीवन में भले ब्राह्मण हैं, डेली ज्ञान सुन रहे हैं, संगठन में भी हैं, और ज्ञान भी हमारी बुद्धि में है, बड़ों के आसपास रहते हैं, या भगवान से मिलन बनाते हैं, या भगवान से दृष्टि भी ले लेते हैं, या स्टेज पर मिल भी लेते हैं, लेकिन ये सारा कुछ पर्याप्त नहीं है। जब तक हमारी व्यक्तिगत साधना नहीं है, व्यक्तिगत तपस्या नहीं है, तब तक हमारे जीवन का परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि अंदर में संस्कार इतने गहरे हैं कि उनको, उनसे मुक्ति पाना बड़े लंबे समय की साधना की जरूरत है, वो हमको पता नहीं चलता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म संस्कार जो हमारे अंदर गहरे तल पर बैठे हुए हैं, ज्ञान से तो हम उनको समझ सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम साधना के पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे तो संस्कारों से मुक्ति पाना संभव है। नहीं तो ब्राह्मण संसार में ही ब्राह्मणों से हम कई प्रकार की भावनाएं पैदा कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से संस्कार हैं, और उन संस्कारों को समाप्त करने के बजाय और ही हम पक्का करते जा रहे हैं, क्योंकि साधना में कहीं ना कहीं कमी है, या साधना कर भी रहे हैं लेकिन यथार्थ साधना नहीं है, उस समझ से साधना नहीं है। उस साधना को केवल हम समय पास करने के लिए कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमको थोड़ा इस पर भी विशेष अटेंशन देने की जरूरत है, जो बाबा ने 14 साल में उन आत्माओं के अंदर, जो सेना वहां तैयार की गई, उन सेनानियों के अंदर कूट कूट के भर दिया कि तपस्या के बल से उनके संस्कारों को परिवर्तन हुआ। जो भी यज्ञ के आरंभ काल की आत्माएं हैं, दादियां भाई जो भी हैं, उनके संस्कारों का कितना परिवर्तन है, और जो उसके बाद के हम देखते हैं कितना परिवर्तन है, उनके संस्कार एकदम अचल अडोल, किसी भी परिस्थिति में अचल अडोल रहते हैं, हलचल में नहीं आते हैं, शांत मुद्रा में रहते हैं, कोई मन में किसी प्रकार की टेंशन नहीं। लेकिन उसके बाद का जो हम पूर्व देखते हैं, कहीं ना कहीं टेंशन में आ जाते हैं, हलचल में आ जाते हैं, तो संस्कारों का परिवर्तन नहीं हुआ, संस्कार कहीं ना कहीं अभी भी हमारे मन में बैठे हुए हैं। लेकिन वो 14 साल की जो साधना थी, जिस साधना से जो सेना गुजरी, उस सेना का जो संस्कार थे, वो सचमुच संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए शक्तिशाली थे, वो बहुत शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र के रूप में एकदम कायम हो गए, वो स्थापित कर दिए बाबा ने उनकी मन की भूमि के ऊपर, उन संस्कारों का बीजारोपण हो गया, जो संस्कार इतने बड़े यज्ञ के परिवार को पालना के निमित्त बने। तो सबसे पहले साक्षात्कार की क्रांति, जिसे बाबा ने अनेक बच्चों को साक्षात्कार करा के उस यज्ञ की नींव को मजबूत किया, ताकि संसार में जितनी भी हलचल है उसको समाप्त करके, जो मन के अंदर जो दुश्मन बैठे हैं उनको समाप्त किया जा सके। फिर ब्रह्मचर्य की क्रांति, पवित्रता की क्रांति, जो घरों में कितना विरोध करना पड़ा उसका, कितने लड़ाई झगड़े हो गए, और ऐसे ऐसे नहीं, बड़े बड़े घरों की छोटी छोटी बच्चियां, उसमें कितनी उम्र थी देखते हैं ना, 7-8 साल 9 साल, तो क्या ज्ञान समझ में आया होगा। लेकिन बाबा ने उनको कितनी पालना दी, कितना साक्षात्कार के माध्यम से उनके मन को, कितना अर्थात उनके जैसे संस्कारों को, बिल्कुल पुराने संस्कारों को बिल्कुल वाश कर दिया। जो दादियां हैं उनके मुख से कभी भी हमने इस संसार का कोई संसारिक शब्द नहीं सुना है, टोटली अलौकिक, टोटली ज्ञान के शब्द है। लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में आने के बाद हम देखते हैं कभी कभी जो हमारे मुख से, अनेक कई लोगों के मुख से भी कोई कोई अपशब्द निकल जाते हैं, तो संस्कारों का परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन बाबा ने साक्षात्कार के माध्यम से जैसे असीम कृपा उनके ऊपर बरसे, तो मन को जैसे बाबा ने उनको एकदम साफ सुथरा कर दिया और उस पर एक नए संस्कार रोपित कर दिए। तो जो साक्षात्कार का पाठ था वो भी विशेष था, उसकी अहम भूमिका थी। फिर उसके बाद जो पवित्रता का बल उन आत्माओं में भरा, वो आत्मिक दृष्टि की साधना, आत्मिक दृष्टि की क्रांति, ये आत्मा आत्माएं देखना है। जो बाबा कहते हैं कि एक घंटा बैठ जाओ कि मैं आत्मा हूं, है तो छोटा सा संकल्प, लेकिन इस छोटे से संकल्प में ही सारा ज्ञान समाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे में ज्ञान उतना अगर हमारे अंदर नहीं आ रहा है, तो जो पहला संकल्प है कि मैं आत्मा हूं, क्योंकि ज्ञान आत्मा सुनेगी, आत्मा के अंदर रिकॉर्डिंग हुआ, तो इस ज्ञान को अगर सुनने के लिए हमारा जो पहला थॉट ये, या पहला जो मन को स्वीकार करना है, या अपने आप को जो हम हैं वो हमको समझना है, अगर वो हम नहीं समझते, हम दैहिक स्तर पर ज्ञान को सुनते हैं, तो वो देह तक ही सीमित रह जाता है और देह विनाशी है, और उस ज्ञान का फिर भी विनाश हो जाता है। आत्मा का पाठ इतना पक्का करा दिया कि ज्ञान का हर बिंदु उन आत्माओं के अंदर चला गया, जो सेना तैयार की, इतना लश्कर तैयार किया गया, तो उस ज्ञान के आधार पर ही इस यज्ञ की नींव मजबूत हुई, एक नई क्रांति, पवित्रता के बल पर, साक्षात्कार के बल पर, नए ज्ञान के बल पर बाबा ने उन आत्माओं को, उस इस संसार को मुक्त कराने के लिए, जो विकारों की हवा चल रही चारों ओर, उससे मुक्त कराने के लिए उन बच्चों के अंदर जैसे रूपित कर दी। तो एक ज्ञान की क्रांति, राजयोग की क्रांति, संसार में अनेक प्रकार के योग हैं, लेकिन एक हमारा ये बाबा का नया योग है, ये है मन का योग। ये तो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, मन हमारा हमारे आत्मा हो, नियंत्रण में हो, तो इस राज्यों के माध्यम से बाबा ने हमारे मन को कितना साफ कर दिया। मन के अंदर जो मैल थी, मन के अंदर जो असंख्य दुश्मन समाये हुए हैं, वो जो घात लगाकर बैठे हैं, जिनसे हमने प्रीत करके रखी हुई है और जिनसे हम सुख का अनुभव कर रहे हैं जबकि वो वास्तव में दुख है, और अनेकों बार वो भोग भोगने के बाद, उन दुश्मनों के माध्यम से भोग भोगने के बाद, फिर दुख मिलने के बाद, उसका परिणाम भी हमको मालूम होने के बाद भी, फिर भी संसार में उन्हीं दुश्मनों से प्यार कर रहे हैं, तो उन सबसे हमको छुड़ाना धीरे धीरे। कोई बच्चे के हाथ में अगर कोई चीज होती है और वो नुकसान कारक है तो उसको छुड़ा, और बच्चा उसको छोड़ ही नहीं रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है कि मुझे तो यही चाहिए। संसार में तो हम भी ऐसे थे ना, भिकारों को कहां छोड़ा, उन्हीं से इतनी प्रीत करके रखी, उन्हीं से हमने पकड़ के रखा था, उन्हीं को हमने अपने गोद में बिठा के रखा था, अब उसको छोड़ेंगे कैसे। तो बाबा ने हमको ज्ञान के नए नए बिंदु दिए, ज्ञान का प्रकाश दिया, जिनके माध्यम से हम इन विकारों से मुक्ति करने का हमने संकल्प किया। वो संकल्प की चिंगारी हमारे अंदर मन की भूमि पर एक रोपित कर दी और इस चिंगारी से ज्ञान की ज्वाला भड़की, जिस ज्वाला से हमारे अंदर के जो दुश्मन हैं उनको सेक लगा और वो धीरे धीरे जलने लगे। तो जो भस्म हो रहे हैं, विक्रम भस्म करने का जो है एक ज्ञान की क्रांति, जिसके माध्यम से, जैसे आज ही बाबा ने मुरली में कहा ना कि भूतों को भगाने का तरीका क्या है, हाँ जी, हाँ, सामने वाले के अंदर अगर कोई भूत आ जाए तो किनारा कर लो, हाँ, और आस्तिक कौन है और नास्तिक कौन है, जो देही अभिमानी है वो नास्तिक है, आस्तिक है, ठीक है, देह अभिमानी है वो नास्तिक और देही अभिमानी वो है आस्तिक है। तो बाबा ने कितने कितने अच्छे ये ज्ञान के बिंदु हमारी हमारे मन के अंदर स्थापित कर दिए, जिनके माध्यम से जो अंदर भूत बैठे हैं, तो देही अभिमानी स्थिति में हम आस्तिक बनेंगे, वो ज्ञान हमारी बुद्धि में ठहरने लगेगा। परसों एक बहुत अच्छा पॉइंट था कि तुम्हें किस चीज से गहराज रहना है, हाँ, देह अभिमान से तुम्हें गैर हाजिर रहना है, कितना अच्छा पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट, फिर एक और बहुत अच्छा पॉइंट था, बाबा को विचार आता है, कौन सा, हाँ, वो मुरली के स्टार्टिंग में था, परसों की मुरली में, कि बाबा को विचार आता है कि सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं इनसे मैं पूछूं कि लिख कर दो कितना समय बाबा की याद में रहते हो और किसकी याद में बैठे हो और कैसे याद करते हैं, लिख के बताओ। तो जो सबने लिखा है वो बाबा ने नहीं लिखा, बाबा ने क्या लिखा था, अल फॉर बी। तो टोटली कैसे, एक नई भाषा है, उसको कोई सोच ही नहीं सकता है। तो इतना सुंदर ज्ञान जो हमारे जीवन को निरंतर प्रगति के पथ पर ले जा रहा है, तो एक नए ज्ञान की क्रांति, और उस समय तो ज्ञान इतना स्पष्ट भी नहीं था, जो 14 साल में ज्ञान तो धीरे 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 इंडिया में आके ज्यादा प्रत्यक्ष हुआ, उसमें बाबा ने वास्तव में टोटल भगवान उन आत्माओं के ऊपर पूरा ही बलिहार किया था, पूरा ही कुर्बान किया था, क्योंकि उन आत्माओं ने एकदम पूरा अपने जीवन को पूरे यज्ञ की वेदी में समर्पित कर दिया, उसी के ऊपर निछावर कर दिया। लेकिन शायद उसके बाद जो आत्माएं आती हैं धीरे धीरे सोचती हैं ये ठीक है या नहीं ठीक है, थोड़ा हलचल में रहती हैं, कहीं ना कहीं निश्चय की नींव डगमग होती है, इसलिए ज्ञान भी उसी अनुपात में हमारी बुद्धि में ठहरता है। तो जो वो आत्माएं थी, किस तरीके से वो समर्पित हुई, तो बाबा भी उनके ऊपर पूरी तरह ही समर्पित हो गया, इतना उतना कुछ नहीं, कोई परसेंटेज नहीं, और बाद में तो परसेंटेज का हिसाब चल रहा है, इसलिए बाबा कहते हैं यहां जितना देंगे वहां उतना मिलेगा, लेकिन उन आत्माओं के लिए वो तो टोटली की टोटल सरेंडर हो गई। कोई एक नई सेना का निर्माण किया, तो भूतों को भगाने की क्रांति बाबा ने छेड़ दी संसार में, ये जो पूरा संसार है भूतों के वश हो चुका हुआ है, यहां जितना देंगे वहां पद्म मिला गया, लेकिन वो अनलिमिटेड पद्मों से भी ज्यादा मिलेगा वो, हाँ, जितना उतना उन आत्माओं के लिए, वो तो अनलिमिटेड है, लेकिन पद्म फिर भी संख्या में आ जाता है, पद्म भी तो संख्या गिनती है ना उसकी, लेकिन वो अनलिमिटेड, उनके ऊपर पूरा भगवान ही समर्पित हो गया है, तो हम पर भी है समर्पित, उसकी आंख तो नजर तो हमारे ऊपर ही है, तभी तो उसकी कृपा, उसकी आशीर्वाद, उसकी नजर की बदौलत तो हम यहां बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम समस्याओं में कहीं ना कहीं हलचल हो जाते हैं। आज भी यज्ञ में कोई ना कोई समस्या आती तो बड़े दर्जे निश्चिंत रहती हैं, बहुत निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि उनको पता है जीत सुनिश्चित है, लेकिन हम कहीं ना कहीं हलचल में आते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, तो उनको ड्रामा के ऊपर पूरा निश्चय गया। और बाबा को भी पता था कि मैं नंबर वन में जाने वाला हूं, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ किया, बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने। तो दादियां भी ऐसे हैं, पुरुषार्थ तो कर ही नहीं, जबकि उनको पता है कि जीत सुनिश्चित है। तो बाबा ने भी हमको इतना सुंदर ज्ञान दिया है कि इस ज्ञान को अगर हमारी स्मृति में रहता है तो हमारे जीवन में आने वाली जो अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, चाहे तन से, मन से, वायुमंडल से, अनेक प्रकार की परिस्थितियां संबंध संपर्क से आने वाली हैं, तो उनमें भी हम शांति से रह सकते हैं। तो एक हमें अपने आप का ही क्रांतिकारी बनना पड़ेगा, अपने अंदर ये क्रांति छेड़नी पड़ेगी। जो आंतरिक संसार में अनेक प्रकार के तूफान हैं, अनेक प्रकार के जो दुश्मन बैठे हुए हैं, उनको भगाने के लिए हमें एक नई क्रांति छेड़नी पड़ेगी, स्वयं के स्तर पर ही नए पुरुषार्थ की क्रांति, कि कैसे क्या हम करें जो ब्रह्मा बाबा ने किया, कैसे हम उसको अपने जीवन में लाएं, ताकि कम से कम थोड़ा बहुत तो कुछ बाबा का नाम बाला कर सके, कोई तो कहे कि सचमुच हाँ ये भगवान का बच्चा है। अभी ऐसा थोड़ा नहीं कहते हैं ये ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, डायरेक्ट कोई कौन कहते हैं भगवान के बच्चे, ओम शांति वाले। तो कुछ तो अनुभव होना चाहिए था, जो बाबा को आस है हमारे ऊपर कि बच्चे बाप का शो करेंगे, तो वो शो करने के लिए कुछ तो अभियान छेड़ना पड़ेगा, एक आंतरिक क्रांति की एक नई भेदी रणबेरी बजानी पड़ेगी, ताकि जिसके आधार पर थोड़ा तो परिवर्तन दिखाई दे, नहीं तो उसी संसार जो इस ब्राह्मण जीवन में जगत में हम जितना भी पुरुषार्थ करते आए हैं, मुरली सुन रहे हैं, थोड़ा बहुत चल रहे हैं, कुछ तो परिवर्तन चाहिए, चेंज चाहिए, नवीनता चाहिए। अगर नवीनता नहीं है जीवन में तो जीवन में वो उदासी छाई रहेगी, मजा नहीं आएगा, थोड़ा बोरियत हो जाएगी, संबंधों में टकराव होगा, पुरुषार्थ में मजा नहीं आएगा। तो ऐसे टाइम पास करने वाला जैसे अंदर में लगेगा टाइम ही पास करें, बीके बंद तो गए लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अपने आप को ही आंदोलित करना पड़ेगा, दूसरों से आंदोलन छेड़ने की जरूरत नहीं है, स्वयं को आंदोलित करना पड़ेगा कि स्वयं के संस्कार के अंदर कौन सी ऐसी हलचल है जो मेरे पुरुषार्थ में बाधक बने हुए हैं, कहां कहां मेरा टाइम वेस्ट जा रहा है, बाबा ने एक एक पल कैसे अपना सफल किया, एक एक बच्चे को कैसे पालना दी, हर सेनानी का ध्यान रखा, किसी भी स्थूल रूप से भी सूक्ष्म रूप से भी। तो हमें स्वयं के स्तर पर ही व्यक्तिगत पुरुषार्थ, संगठन में हमको भले हम पुरुषार्थ करते हैं यथाशक्ति कर ही रहे हैं, लेकिन जहां भी हम जिस भी स्थान पर रहते हैं, चाहे हम सेवा केंद्र पर हैं, चाहे हम लौकिक में हैं, चाहे दफ्तर में सर्विस करते हैं, जितना भी हमारे पास समय है बहुत अमूल्य समय है, इस अमूल्य समय को ध्यान में रखते हुए हमें अपने आप से ही कुछ नवीनता पुरुषार्थ मिलानी पड़ेगी। तो ही जो शांति की क्रांति का अभियान ब्रह्मा बाबा ने छेड़ा है, इस अभियान में हमारा जो महत्वपूर्ण योगदान मिल उस संसार के लिए कुछ कार्य कर सके। तो इस 18 जनवरी का जो चल रहा है महीना, विशेष तौर पर बहुत वरदानी मास है, तपस्या का मास है, एकदम देह से डिटैच होने का सहज रूप से ये मास है, तो इसका हम पूरा ध्यान रखते हुए पुरुषार्थ का पूरा फायदा लेना है। तो हमने कुछ बातों पर चिंतन किया, ये कि सबसे पहले क्रांति थी साक्षात्कार की क्रांति, फिर उसके बाद पवित्रता की क्रांति, फिर नवज्ञान राज्यों की क्रांति, फिर तपस्या की क्रांति, फिर उसके बाद धीरे धीरे बाबा उधर से आए तो यहां कौन सी क्रांति इंडिया में शुरू हुई, सेवाओं की क्रांति, संसार में सेवाएं कैसे धीरे धीरे बढ़ने लगी, तो एक महाक्रांति का आगाज हुआ। और उस क्रांति को हम देख रहे हैं, सेवाएं संसार में दिन प्रतिदिन कैसे बढ़ती जा रही है, जो पहले तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे आज सब लोग अपनी जमीनें देने के लिए तैयार हैं। लेकिन बाबा ने कहा ना अंत में, बाबा भी तो पक्का राजू रमजवाज है, ऐसे थोड़ा ले लेगा किसी से भी। तो आज सेवाओं का तो दिन प्रतिदिन दौड़ है, लेकिन उस सेवाओं की दौड़ धूप में कहीं हमारा पुरुषार्थ ना छिप जाए, उन सेवाओं में भी तपस्या की वाइब्रेशन हो। सेवाएं तो करनी है लेकिन सेवाएं भी एक योग का माध्यम बन जाए, वो सेवा सेवा ना रहे भाई बल्कि योग बन जाए, तो वो भी हमको अपने स्तर पर ही उस माहौल में रहते हुए, उन परिस्थितियों को देखते हुए, आसपास वाले संबंध संपर्क में उन सबको परख कर, उन सबके साथ मिलकर, उन सबके स्वभाव संस्कार को जानते हुए सबके साथ मिलकर चलना है। अपने योग के चार्ट को कम नहीं होना, बल्कि दिन प्रतिदिन जो बाबा ने कहा हुआ अंतिम स्थिति तुम बच्चों की है, निरंतर योगी निरंतर सेवादारी, तो वो तो आखिर होनी है ना, अंत में नहीं बल्कि हमको ये भी सोचना नहीं है कि अंत में होगी, बल्कि अभी से वो शुरू करना है। तो ये एक सेवाओं की क्रांति हुई, धीरे धीरे जो बढ़ती गई, संसार में फैलती गई। फिर उसके बाद तो फिर बहुत सारी क्रांतियां घटित हुई। मूल्यों के आधार से हम कितनी भी क्रांतियां तैयार कर सकते हैं दैवी गुणों को समाने की, क्योंकि हम सेवाओं में उतरते हैं तो बहुत सारी बातों का हमको ध्यान रखना पड़ता है। कई बातें समानी पड़ती हैं, कहाँ फेस भी करना पड़ता है, कोई बातों के लिए एडजस्ट करना पड़ता है, कहीं ना कहीं निर्माण चित भी होना पड़ता है, सुनना भी पड़ता है, कहीं पीछे हटना पड़ता है, छोटों को आगे करना पड़ता है, या बड़ों का लगता है कि हमको गलत है वो गलत भी करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस समय हम सोचते हैं गलत है, लेकिन बड़े जो है वो दूरदर्शी हैं, उस समय हमको गलत लगता है लेकिन कुछ दिनों के बाद लगता नहीं वही ठीक था। तो कहीं ना कहीं बड़ों का जो कटाक्ष कर देते हैं ये भी हमारे पुरुषार्थ में बाधक बन जाता है। अगर हमको कुछ कुछ कहता तो कर देने का निरसंकल्प होके, क्योंकि उनको निमित्त बनाने वाला स्वयं भगवान है। तो बाबा ने कहा ना, दो चार दिन वाले पहले कहा था, अगर कोई किसी से पाप होता भी है निमित्त से, उसको मैं ठीक कर दूंगा, तुम चिंता नहीं करो। और उनके खाते में पुण्य का बल बहुत जमा है, वो हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि हो सकता है उस समय हम एकदर्शी हैं, त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित नहीं है। तो उस समय हमको उन चीजों से, सेवाओं के क्षेत्र में भी हमको देखना, क्योंकि दैवी गुणों की समावेश जब तक हमारे अंदर उनको आत्मसात नहीं किया है, तब तक सेवाओं में टकराव, लड़ाई, झगड़ा आगे पीछे चलता रहेगा। तो सेवाओं में भी, सेवा भी एक साधना है, तो क्योंकि बिना सेवा के भी कैसे संदेश देंगे किसको। देखते हैं हम शांतिवन में, शांतिवन में बेहद की सेवा है, और शांतिवन में रहना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शांतिवन इतनी सेवा, 12-24 घंटे सेवा चल रही है, उस सेवा में अपने को मेंटेन करके रखना कितनी बड़ी बात है। वो जैसे कोई कहते हैं पांडव में तपस्या है ही है, यहाँ के वाइब्रेशन लग गए हैं, ज्ञान स्वरूप कहते हैं यहाँ पढ़ाई है, और शांतिवन में सेवाओं का संसार है, लेकिन सेवाओं के संसार में भी रहना बहुत बड़ा भाग्य है, वो यहां से भी ज्यादा है। बैठ के तो ये कोई भी कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति सेवा में 24 घंटे है, उसमें भी अपने को, अपनी स्थिति को यथार्थ रखा हुआ है, और उस सेवा से अनेकों को वो संदेश दे रहा है, भले वो हम बोल नहीं रहे हैं लेकिन सामने वाले देख तो रहे हैं ना। क्योंकि जितने भी आते हैं शिविर में तो अनेकों के कई प्रकार के अनुभव होते हैं, वो केवल सुनने से नहीं सीखते हैं बल्कि देखने से सीख के चले जाते हैं। तो ये भी है, सेवाओं की भी एक क्रांति है, इस क्रांति को भी यथार्थ रूप से हमें समझकर उसे भी तपस्या की क्रांति बनाना है। और फिर इसके अंदर तो फिर बहुत सारी बातें आती हैं, जैसे भेदभाव, बाबा ने सब प्रकार के समाप्त कर दिए, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, किसी धर्म जाति पाति की बात नहीं है, तो सब प्रकार के भेदभाव समाप्त हो गए। तो एक नई क्रांति गठित हुई जिसके माध्यम से पूरे संसार में हलचल पैदा होगी, और इस क्रांति से पूरा विश्व परिवर्तन हो जाएगा, एक शांति की क्रांति की, पूरा विश्व सुख शांति में बन जाएगा, पूरे विश्व में दैवी साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। और यहां जो इस क्रांति में है, इस क्रांति में सबको लीडर बनाया जा रहा है, उस क्रांति में तो मारधाड़ भी होती है, लेकिन यहां इस क्रांति में जो शामिल हो गया उसको तो पद कोई ना कोई सुनिश्चित पक्का ही है। इस तरीके से हमको जो ब्रह्मा बाबा के पद चिन्ह है, ब्रह्मा बाबा के कदम है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा बेफिक्र वाशा, इतनी बड़े समस्याएं और बाबा एकदम निश्चिंत रहे, कोई फिक्र नहीं। बैगरी पार्ट की क्रांति भी हुई, एक बैगरी पार्ट में बाबा कैसे निश्चिंत रहे, नहीं तो घर में 4 बच्चे हैं और कहीं भी भोजन दो, रोटी नहीं है तो माँ बाप को कितना होता है, और यहाँ तो 400 बैठे हुए हैं, 12 बजे तक कुछ है ही नहीं है और उनको खिलाना है, फिर भी बाबा निश्चिंत हैं। तो उस बैगरी पार्ट में भी कितने बाबा निश्चिंत रहे। अगर संसार में कोई क्रांति चल रही है और सारा मटेरियल उनका खत्म हो जाए, लड़ाई झगड़ेगा तो क्या होगा, उनका कोई आक्रमण कर देगा, लेकिन यहां तो बाबा अचल अडोल स्थिर कैसे रहे। तो इस तरीके से हमको इस मास में विशेष तौर पर इतनी साधना करनी है ताकि जो इस मास में हम जो नींव डालेंगे पूरा साल उसी के आधार पर हमारा शक्तिशाली निकले, ना केवल हमारा बल्कि हम सुमन संपर्क वाली आत्माओं को, सेवा साथियों को भी शक्तिशाली बना सकें, ताकि हमारा जीवन पूरा सार्थक हो सके। ओम शांति।